एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी के इस अंक में मैं आपका पहला मेजबान आपका स्वागत करता हूँ।
और मैं हूँ आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विचारक के साथ हैं, राल्फ वाल्डो एमर्सन।
हाँ, अमेरिकी विचारक, और हम उनके निबंधों के संग्रह एसेज फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज इस पर बात करने वाले हैं।
बिल्कुल, और हमारा खास ध्यान रहेगा आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ रिलायंस और आंतरिक विवेक पर, अपनी अंदर की आवाज सुनना।
और ये विषय आज के जमाने में कितने कितने जरूरी हो गए हैं ना।
बहुत ज्यादा। जरा सोचिए ना, आजकल समाज, फिर ये सोशल मीडिया, दूसरों की उम्मीदें, कितना दबाव रहता है हम सब पर।
हाँ, हर कोई जैसे हमें बता रहा है कि क्या करें क्या सोचें।
सही कहा। ऐसे में अपनी असली आवाज सुनना और फिर उस पर भरोसा करना, ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है, पर जरूरी भी उतना ही है।
और एमर्सन के विचार, मुझे लगता है हमें इसी शोर से थोड़ा बाहर निकालकर अपनी सच्चाई की ओर लौटने का रास्ता दिखाते हैं।
तो चलिए शुरू करने से पहले एमर्सन को थोड़ा जान लें। कौन थे ये राल्फ वाल्डो एमर्सन?
जरूर। एमर्सन मतलब 1803 से 1882 तक ये सिर्फ एक लेखक या दार्शनिक ही नहीं थे, अमरीकी सोच के लिए एक मील का पत्थर माने जाते हैं।
और वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट आंदोलन से जुड़े थे।
हाँ, उसके सबसे प्रमुख चेहरों में से एक। ये आंदोलन व्यक्ति के अंतर्ज्ञान पर, आत्मा की दिव्यता पर और प्रकृति के महत्व पर बहुत जोर देता था।
और इनकी अपनी कहानी भी तो काफी मतलब उतार चढ़ाव वाली रही।
बिल्कुल, बोस्टन के एक जाने माने पादरी परिवार से थे, हार्वर्ड से पढ़े और खुद भी पादरी बने थे शुरू में।
लेकिन फिर?
हाँ, फिर जीवन में कुछ व्यक्तिगत मुश्किलें आई, कुछ त्रासदियां हुई और उनके मन में धर्म और परंपराओं को लेकर सवाल उठने लगे, बौद्धिक सवाल।
अच्छा।
और आखिरकार उन्होंने चर्च छोड़ दिया। ये जो मोह भंग था ना स्थापित ढांचे से, यही उनके लेखन की, उनके विचारों की जान बन गया, वो हिम्मत सवाल पूछने की।
उनकी सोच में क्या खास था? मतलब कहाँ से प्रेरणा लेते थे वो?
देखिए, उनकी खासियत ये थी कि उन्होंने कई अलग अलग धागों को मिलाकर एक नई चादर बुनी। उन्होंने पश्चिमी दर्शन को समझा, जैसे कांट के विचार।
जी।
साथ ही कुछ लोग मानते हैं कि पूर्वी दर्शन, जैसे हमारे हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में भी उनकी रुचि थी।
अच्छा।
हाँ, और फिर प्रकृति, प्रकृति से उन्हें गहरा लगाव था। और वो खुद एक बहुत लोकप्रिय वक्ता थे, तो लोगों से जुड़ने का अनुभव भी था। इन सबको मिलाकर उन्होंने अपनी एक अलग सोच पेश की।
तो वो सिर्फ सिखाते नहीं थे?
नहीं, सिखाने से ज्यादा वो लोगों को जगाते थे, सोचने पर मजबूर करते थे, अपने अंदर झांकने के लिए उकसाते थे। एक तरह के अवेकनर थे वो।
जगाने वाले। अब आते हैं उनकी किताब एसेज पर। ये कैसी किताब है? कोई कहानी है इसमें?
नहीं, कहानी नहीं है, ये निबंधों का संग्रह है, अलग अलग विषयों पर गहरे विचार, जैसे इतिहास, दोस्ती, प्रेम, कला,
प्रकृति।
हाँ प्रकृति, और सबसे जरूरी स्वयं, मतलब हम कौन हैं, हमारा वजूद क्या है।
तो इन सब का मकसद क्या है? क्या कहना चाहते हैं एमर्सन इन निबंधों से?
उनका जो केंद्रीय विचार है वो उस जमाने के हिसाब से काफी क्रांतिकारी था। वो मानते थे कि हर इंसान के अंदर, उसके अपने भीतर ही ज्ञान का, नैतिकता का, यहाँ तक कि दिव्यता का एक स्रोत मौजूद है।
अपने अंदर ही, बाहर नहीं खोजना है।
बिल्कुल, असली जीवन जीने का मतलब है इस अंदर की आवाज को पहचानना, उस पर पूरा भरोसा करना और दुनिया चाहे जो कहे उसे व्यक्त करना।
ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब दूसरों की नकल मत करो।
हाँ, भीड़ चाल से बचो, अपनी राह खुद बनाओ और अतीत या भविष्य में मत अटके रहो, वर्तमान में जियो, वर्तमान क्षण में जो शक्ति है उसे पहचानो।
तो ये किताब एक तरह की अंदरूनी यात्रा पर ले जाती है।
आप कह सकते हैं इसमें आत्मनिर्भरता, व्यक्ति और समाज का रिश्ता, प्रकृति की भूमिका, नॉन कन्फॉर्मिटी यानी लीक से हटने का साहस,
और वो कंपेंसेशन वाली बात भी।
हाँ, मुआवजा या प्रतिकार का सिद्धांत, ब्रह्मांड का नैतिक संतुलन, ऐसे कई गहरे विषयों पर बात की है।
और भाषा, सुना है थोड़ी मुश्किल है?
मुश्किल नहीं, पर हाँ सूत्रात्मक है, मतलब छोटे छोटे वाक्यों में गहरी बात, एफोरिस्टिक स्टाइल, थोड़ा रुक कर सोच कर पढ़ना पड़ता है, पर सोचने को बहुत कुछ मिलता है।
चलिए तो फिर कुछ मुख्य निबंधों में और गहरे उतरते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे मशहूर वाले से, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। क्या है इसका निचोड़?
इसका सार एमर्सन की एक लाइन में है जो बहुत प्रसिद्ध है, ट्रस्ट दाई सेल्फ, एवरी हार्ट वाइब्रेट्स टू दैट आयरन स्ट्रिंग.
ट्रस्ट दाई सेल्फ, अपने आप पर भरोसा करो.
हाँ, हर दिल उसी एक परम सत्य की तार से जुड़ा है, उसी से कंपन करता है. मतलब समाज क्या कहता है, परंपराएं क्या हैं, बड़े लोगों की राय क्या है, इन सब से ऊपर अपनी अंतरात्मा की आवाज है, उसको सुनो, वो ही तुम्हारी असली गाइड है.
पर ये कहना आसान है, करना मुश्किल. समाज तो हमेशा चाहता है कि हम एक जैसे बने, एक ढर्रे पर चलें.
बिल्कुल, और इसीलिए इमर्सन साफ कहते हैं, Whoso would be a man must be a non-conformist.
Non-conformist मतलब जो लीक पर ना चले.
हाँ, जो सच में इंसान बनना चाहता है उसे भेड़चाल का हिस्सा बनने से इनकार करना होगा, समाज की बनाई लकीरों से बाहर निकलने का साहस दिखाना होगा. और यही उनकी वो दूसरी मशहूर लाइन आती है, अ फूलिश कंसिस्टेंसी इज द हॉबगॉब्लिन ऑफ लिटिल माइंड्स.
ये तो बहुत सुना है, मूर्खतापूर्ण स्थिरता छोटे दिमागों का हौवा है. इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये नहीं कि उसूलों पर ना टिके, पर सिर्फ इसलिए किसी पुरानी बात या विचार से चिपके रहना क्योंकि वो पुराना है या हम हमेशा से वैसा मानते आए हैं, ये मूर्खता है, ये छोटे दिमाग का डर है.
अच्छा,
हमें नए सच को, नए विचारों को अपनाने के लिए खुला होना चाहिए. बदलना, विकसित होना जरूरी है, सिर्फ लकीर का फकीर बने रहना ठीक नहीं.
लेकिन ये जो अपने आप पर भरोसा है, कहीं ये हमें अहंकारी या स्वार्थी तो नहीं बना देता?
बहुत अच्छा सवाल है ये. एमर्सन के लिए ये आत्मविश्वास, अहंकार नहीं है, क्योंकि ये जुड़ा है उनके एक और बड़े विचार से, द ओवरसोल.
ओवरसोल
ये क्या है?
ये क्या है?
ये उनके दर्शन का आध्यात्मिक आधार है. आप कह सकती हैं एक महान सार्वभौमिक चेतना, एक विश्वात्मा. वो मानते थे कि हम सब उसी एक परम चेतना से जुड़े हुए हैं. वी आर पार्ट और पार्टिकल ऑफ गॉड. हम ईश्वर के अंश हैं.
अच्छा,
तो जब हम अपने अंदर की सच्ची आवाज सुनते हैं,
हाँ,
तो वो सिर्फ हमारी अपनी आवाज नहीं होती.
एमर्सन के हिसाब से नहीं, वो उसी सार्वभौमिक सत्य की अभिव्यक्ति होती है. हमारे अंदर जो अचानक प्रेरणा आती है, जो इंट्यूशन या सहज ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है, वो असल में इसी ओवरसोल से हमारे जुड़ने के पल होते हैं. इसलिए अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करना, असल में उस परम स्रोत पर, उस ओवरसोल पर भरोसा करना है, तो ये हमें स्वार्थी नहीं बनाता, बल्कि सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस कराता है.
ये तो बहुत गहरा विचार है, सच में
है ना? हाँ. अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सिद्धांत है, कंपेंसेशन, मुआवजा या प्रतिकार. ये क्या कहता है?
ये सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड में एक तरह का नैतिक संतुलन हमेशा काम करता रहता है. हर कर्म का फल, अच्छा या बुरा, तुरंत और जरूर मिलता है.
तुरंत मतलब कर्म किया और फल हाजिर.
हाँ, पर ये कोई बाहरी सजा या इनाम नहीं है, जैसे स्वर्ग नरक की बातें होती हैं, ऐसा नहीं. ये कर्म का स्वाभाविक अंदरूनी नतीजा है, आत्मा के लेवल पर होता है.
आत्मा के लेवल पर कैसे?
जैसे मान लीजिए कोई बेईमानी करता है, दुनिया को शायद पता ना चले, पर एमर्सन कहते हैं कि उस बुरे कर्म का असर उसकी अपनी आत्मा पर तुरंत पड़ता है. उसकी आत्मा कमजोर होती है, मैली होती है.
अच्छा.
और इसी तरह जब हम कोई अच्छा निस्वार्थ काम करते हैं, तो उसका अच्छा असर भी हमारी आत्मा पर तुरंत पड़ता है. वो उन्नत होती है, मजबूत होती है.
तो ये एक तरह का ऑटोमेटिक जस्टिस सिस्टम है.
बिल्कुल, जो हर पल काम कर रहा है. ये हमें अपने हर छोटे बड़े काम के प्रति बहुत जिम्मेदार बनाता है, क्योंकि असर तो होना ही है.
ये भी सोचने वाली बात है. अच्छा, एमर्सन के लिए प्रकृति, नेचर का भी तो बहुत महत्व था.
ओह, बहुत ज्यादा. उनके लिए प्रकृति सिर्फ देखने की चीज या इस्तेमाल करने का साधन नहीं थी, वो एक महान टीचर थी.
टीचर कैसे सिखाती है प्रकृति?
पहाड़, नदी, पेड़, मौसम, ये सब हमें जीवन के नियम सिखाते हैं. संतुलन, धीरज, विकास, सुंदरता. प्रकृति की अपनी एक शांत भाषा है, उसे समझने की कोशिश करना खुद को और यूनिवर्स के नियमों को समझने जैसा है.
अच्छा.
वो कहते थे कि बाहरी प्रकृति हमारे अंदर की प्रकृति का ही आईना है, हमारे अंदर के आध्यात्मिक नियमों का प्रतिबिंब. आज हम शहरों में रहते हैं, प्रकृति से कट गए हैं.
हाँ, ये तो है.
एमर्सन हमें वापस उसकी ओर मुड़ने की प्रेरणा देते हैं, उसमें शांति और ज्ञान दोनों हैं.
और दोस्ती पर क्या विचार थे उनके? सुना है वो भी काफी ऊंचे आदर्श थे.
हाँ, उनके लिए सच्ची दोस्ती दो आत्मनिर्भर ईमानदार लोगों के बीच का एक बहुत पवित्र रिश्ता था. इसमें दिखावा नहीं, जरूरत नहीं, बल्कि सच्चाई चाहिए, पूरी ईमानदारी। वो डबल सॉलिट्यूड की बात करते हैं, मतलब दो लोग साथ होकर भी एक दूसरे के अकेलेपन का, उनकी अपनी स्पेस का सम्मान करें, एक दूसरे को बदलने की कोशिश न करें।
ये मुश्किल लगता है।
है, और उनकी वो लाइन कितनी सही है, दी ओनली वे टू हैव अ फ्रेंड इज टू बी वन।
दोस्त पाने का एक ही तरीका है, खुद वैसा दोस्त बनो।
बिल्कुल। अच्छे रिश्ते हमें बाहर से नहीं मिलते, हमें अपने अंदर वो गुण पैदा करने होते हैं जो हम दूसरों में खोजते हैं।
तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो मुख्य संदेश क्या निकल कर आते हैं एमर्सन से? पहला तो मेरे लिए यही है, व्यक्ति की अपनी क्षमता, उसकी आंतरिक दिव्यता। गुरु बाहर नहीं, अंदर है।
हाँ बिल्कुल। और दूसरा, आत्मविश्वास और नॉन कन्फॉर्मिटी का साहस, भेड़ चाल से अलग अपनी राह बनाने की हिम्मत। हम भारत में देखते हैं ना, लोग क्या कहेंगे का डर कितना होता है।
हाँ, बहुत ज्यादा।
एमर्सन उस डर से आजादी दिलाते हैं, कहते हैं अपनी सच्चाई पर टिको, चाहे अकेले ही क्यों ना खड़े हो।
तीसरा, वो ओवर सोल वाला विचार, मतलब हम सब जुड़े हुए हैं, अपनी असलियत में जीना हमें अकेला नहीं करता बल्कि सबसे जोड़ता है, कुछ कुछ वसुधैव कुटुंबकम जैसा।
सही कहा। और चौथा, प्रकृति से सीखना। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये बहुत जरूरी है, प्रकृति की ओर लौटना, उससे जुड़ना।
और पांचवा, वो कर्म और फल वाला संतुलन, कॉम्पनसेशन। ये हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है, हर सोच हर कर्म मायने रखता है।
उनकी कुछ बातें तो ऐसी हैं जो सीधे दिल पर लगती हैं, जैसे वो ट्रस्ट योर सेल्फ वाली लाइन बार बार याद दिलाती है कि जवाब अंदर है।
हाँ, और वो वाली, अ फूलिश कंसिस्टेंसी इज द हॉबगॉब्लिन ऑफ लिटिल माइंड्स, ये तो आज के लिए कितनी सही है, लोग अपनी राय बदलने से कितना डरते हैं।
बिल्कुल। ये हमें बौद्धिक ईमानदारी की चुनौती देती है कि सीखने और बदलने के लिए तैयार रहो।
और दोस्ती वाली बात, The only way to have a friend is to be one, ये रिश्तों की नींव पर सोचने को मजबूर करती है।
हाँ।
और एक जो मुझे बहुत पसंद है, What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us.
ये गजब है। मतलब अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता, ये उतनी बड़ी बातें नहीं है
जितनी हमारे अंदर की क्षमता है। हमारे भीतर जो शक्ति छुपी है, ये हमें वर्तमान में जीने और अपनी अंदरूनी ताकत पर फोकस करने को कहती है।
ये सब सुनने में बहुत प्रेरणा देता है, पर सवाल वही है, रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें इन विचारों को? ये सिर्फ फिलॉसफी है या प्रैक्टिकल भी है?
नहीं नहीं बिल्कुल प्रैक्टिकल है। देखिए, जैसे कोई भी फैसला लेना हो, छोटा या बड़ा, करियर का, रिश्ते का,
हाँ,
तो क्या हम एक पल रुककर ये सोच सकते हैं कि दुनिया क्या चाहती है, या मेरे अंदर से क्या आवाज आ रही है, मेरी अपनी इंट्यूशन क्या कह रही है?
ये कोशिश की जा सकती है, शायद थोड़ा अकेले में बैठकर या लिखकर सोचने से मदद मिले। बिल्कुल। और करियर में भी, सिर्फ पैसा या रुतबा देखकर नहीं, बल्कि वो काम चुनना जिससे सच में जुड़ाव महसूस हो, जिसमें हम अपने ओरिजिनल आइडियाज ला सकें, भले ही वो रास्ता मुश्किल लगे।
हाँ, ये हिम्मत की बात है।
और रिश्तों में ईमानदारी, दिखावे से बचना, ऐसे रिश्ते जहाँ हम एक दूसरे को बदलने के बजाय एक दूसरे की ग्रोथ में मदद करें।
और मानसिक शांति के लिए, आजकल तो इतना शोर है चारों तरफ।
हाँ, तो एमर्सन का एकांत, सॉलिट्यूड का आइडिया और भी जरूरी हो जाता है। जानबूझकर थोड़ा वक्त निकालना, बिना स्क्रीन के, बस अपने साथ या प्रकृति में,
खुद से जुड़ने के लिए।
बिल्कुल। और अगर कोई क्रिएटिव काम कर रहा है, कुछ नया बना रहा है,
हाँ,
तो अपनी मौलिक सोच पर भरोसा करना, ना कि सिर्फ ये देखना कि आजकल क्या चल रहा है या लोगों को क्या पसंद आएगा।
तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी सीख क्या है?
मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख यही है कि असली शक्ति, असली ज्ञान, असली खुशी, वो सब हमारे अंदर है, बाहर नहीं। ये जानना ही अपने आप में एक बड़ी आजादी है। हमें किसी बाहरी गुरु या सत्ता पर पूरी तरह निर्भर होने की जरूरत नहीं है।
और ये समझना कि अपने प्रति सच्चा होना, ऑथेंटिक होना, ये स्वार्थ नहीं है।
बिल्कुल नहीं, बल्कि जब हम अंदर से सच्चे और संतुलित होते हैं, तब ही हम दुनिया में बेहतर योगदान दे पाते हैं और दूसरों से भी गहरे सच्चे रिश्ते बना पाते हैं। नकलीपन से बात नहीं बनती।
हाँ, ये तो है।
और मुझे लगता है एमर्सन का एक संदेश आज के समाज के लिए भी बहुत जरूरी है कि एक अच्छा लोकतंत्र सिर्फ कानूनों से नहीं बनता।
तो फिर
वो बनता है ऐसे नागरिकों से जो खुद सोच सकें, जो नैतिक निर्णय ले सकें, जो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही एक मजबूत समाज बनाते हैं।
बिल्कुल सही कहा। तो अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
हाँ।
आज के इस तेज रफ्तार शोर भरी दुनिया में हम सब अपनी उस अंदरूनी तार, अपनी अंतरात्मा की महीन आवाज को ज्यादा ध्यान से सुनने और फिर उस पर अमल करने का साहस कैसे जुटा सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।